हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद शिवांशा को फिलहाल मार नहीं सकता था। वो साथ ही उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता था। बहुत से राज ऐसे थे जो अभी भी उसकी नजरों से छुपे हुए थे। उनमें से एक ये था कि अगर अब तक राजावत फैमिली शिवांशा की रक्षा कर रही थी, तो अचानक क्या हो गया कि वो उसकी जान लेना चाहते थे। वैसे भी वेद ने सबके सामने शिवांशा को अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार किया था। अब वो इस रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ सकता था, भले ही उनकी शादी ना हुई हो। वेद शिवांशा को लेकर चौहान पैलेस पहुंचा। अंदर जाने से पहले शिवांशा का शादीशुदा दिखना जरूरी था। सुबह होने की वजह से ज्यादा दुकानें नहीं खुली थीं, लेकिन फिर भी वेद उसके लिए मंदिर से सिंदूर की डिब्बी ले आया था। उसने शिवांशा को माथे पर सिंदूर लगाने को कहा। मंगलसूत्र नहीं होने की वजह से वेद को मजबूरी में अपने गले में पहना चैन और पेंडेंट निकालकर शिवांशा को देना पड़ा। शिवांशा उन्हें पहनने के बजाय हैरानी से देख रही थी। तभी वेद ने इरिटेट होकर कहा, किसका इंतजार कर रही हो? इन्हें लगाए बिना अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। रात होने की वजह से कल लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सबको दिख जाएगा कि तुम शादीशुदा नहीं लग रही हो। शिवांशा ने उसे देखकर उसकी बात पर हामी भरी और फिर मिरर में देखते हुए खुद ही अपनी मांग में सिंदूर लगाया। फिर उसने वेद की दी हुई चैन और पेंडेंट की तरफ देखा। शिवांशा ने उसे वेद की तरफ बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ये नहीं रख सकती, ये बहुत कीमती है। वैसे भी इतनी सारी ज्वेलरी के अंदर नहीं दिखेगा कि मैंने मंगलसूत्र पहने हूं या नहीं। आप ये अपने पास वापस रख लीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है अपनी सबसे प्यारी चीज तुम्हें थमाने का। अफसोस होता है कि राजावत फैमिली ने अपनी होने वाली बहू को शादी में पहनने के लिए नकली गहने दिए। नाम के लिए भी सही, लेकिन तुम चौहान फैमिली की बहू हो। अब इसे पहनो और बाद में मुझे वापस लौटा देना। मेरे लिए ये तुम्हारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है, तो अपनी जान से बढ़कर संभाल कर रखना, वेद ने सख्त आवाज में कहा। वेद जिस तरह रिएक्ट कर रहा था, उससे साफ था कि वो देवी माँ की मूर्ति उसके लिए मायने रखती थी। जरूर वो उसके लिए किसी की निशानी थी, क्योंकि वो दिखने में पुराने डिजाइन की लग रही थी। शिवांशा को पूछने का कोई हक नहीं था, इस वजह से उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे पहन लिया। उसके बाद वेद ने पैर से गाड़ी ड्राइव की और चौहान पैलेस की तरफ जाने के लिए निकल गया। वहीं चौहान पैलेस के बाहर पहले से ही मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा इकट्ठा हो गया था। रात भर में ही नव्यांशी और आराध्या ने इवेंट मैनेजमेंट टीम को हायर करके पैलेस को बाहर से अच्छा खासा डेकोरेट करवा दिया था। अंदर भी डेकोरेशन का काम हुआ था। वो सब तैयार होकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। आराध्या ने आरती की थाली ले रखी थी। उसने वंश से पूछा, आपकी भाई से बात हुई? उनको आने में कितना टाइम लगेगा? वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रतीक से बात की थी तो उन्होंने बताया कि वो घर आने के लिए ही निकले हैं, वंश ने शांत लहजे में जवाब दिया। वहीं अक्षत खिड़की के बाहर खड़ा मीडिया को देख रहा था। उसकी इस हरकत को नव्यांशी ने नोटिस किया तो वो इरिटेट होकर तेज आवाज में बोली, क्या कर रहे हो अक्षत वहां? अभी भी तुम्हारी हरकतें बहुत चाइल्डिश हैं। देखो बाहर कितनी मीडिया आई है, हमने तो उन्हें इन्वाइट नहीं किया, अक्षत ने हैरानी से कहा। हमें इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है, इन्हें खुद को टीआरपी चाहिए होगी। थैंक गॉड जो कल रात हमने घर को डेकोरेट करवा लिया था, वरना सबको यही लगता कि हमें भाई की शादी के बारे में कोई खबर नहीं है, नव्यांशी ने राहत की सांस लेकर कहा। ये उसी का फैसला था कि पैलेस को डेकोरेट किया जाए, वंश ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। हाँ नवी, तुम हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन लेती हो नवी, वरना हम में से किसी ने इस बारे में नहीं सोचा था। भाई हमेशा यही कहते हैं कि घर के अंदर चाहे कितनी भी खटपट क्यों ना हो, लेकिन आपसी अनबन कभी बाहर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। वो सब आपस में बात कर रहे थे जबकि अक्षत की निगाहें अभी भी बाहर उलझी हुई थीं। इस बीच उसने देखा कि वेद की गाड़ी गेट से एंटर करके अंदर की तरफ बढ़ रही थी। अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ गई। अक्षत ने सबकी तरफ देखकर एक्साइटेड होकर कहा, भाई और भागी आ गए हैं, चलो हम उनका वेलकम करते हैं। नव्यांशी ने उसकी बात पर हामी भरी। वेद ने चाहे जैसे भी शादी की हो, लेकिन वो उसकी इस इतनी बड़ी खुशी में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहते थे। उन्हें पहली बार मौका मिला था वेद के लिए कुछ करने का। थोड़ी ही देर में नव्यांशी ने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स करवा लिए थे। वेद और शिवांशा के गाड़ी से बाहर निकलते ही मीडिया वालों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें साइड में कर दिया था। जब तक वेद की इजाजत नहीं होती, तब तक कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। मीडिया वाले दूर से ही उन्हें कवर करने लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल रात अचानक मिस्टर वेद सिंह चौहान की शादी सबके सामने रिवील हुई थी। शायद दोनों की एज में इतना डिफरेंस होने की वजह से वो सबके सामने शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता।
आप सब देख सकते हैं कि मिसेस चौहान का वेलकम कितने ग्रैंड तरीके से किया जा रहा है, जैसा कि रॉयल फैमिली की परंपरा होती है। उन सब की एक एक बात वेद के कानों में पड़ रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली थीं। न जाने मीडिया वाले उसके बारे में क्या क्या बातें बना रहे थे। उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा, जो उम्र में उससे काफी छोटी थी। वेद ने मन ही मन कहा, अजीब मुसीबत है, मुझे क्यों अपने ही दुश्मन की पोती से प्यार होगा, जो उम्र में मुझसे इतनी छोटी है। हमारा कोई मेल नहीं है। कल रात अगर अपने बर्थडे का नहीं सोचा होता तो इस लड़की को वहीं पर मार देता, और शायद यही मेरे लिए सही रहता। गले की हड्डी बन गई है ये लड़की। शिवांशा को इतने लोगों के बीच में घबराहट हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने वेद का बाजू पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर वेद कुछ कह भी नहीं पाया। वहीं बाकी की चौहान फैमिली शादी की आगे की रस्में और आरती की थाली लेकर उनके सामने आई। शिवांशा को देखकर आराध्या और अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो काफी मासूम सी और छोटी सी लगती थी। वहीं अचानक नव्यांशी की नज़र शिवांशा के गले पर गई। वेद का पेंडेंट शिवांशा के गले में देखकर दिव्यांशी ने गुस्से में गहरी सांस ली। उसने एक नज़र वेद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खुशी जैसे कोई भाव नहीं थे। आराध्या ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर शिवांशा से बोली, आइए भाभी, सबसे पहले आप आलते में अपना पैर रखकर अपनी छाप इस घर पर छोड़ दीजिए। फिर हम देवी माँ के मंदिर में जाकर आप दोनों की शादी के लिए आशीर्वाद लेंगे। कुछ भी करने से पहले शिवांशा ने घबराहट भरी नज़रों से वेद की तरफ देखा। वेद ने आराध्या से कहा, ये सब करना ज़रूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भी गृह प्रवेश ऐसा ही हुआ था, और इस घर में आने वाली हर बहू का गृह प्रवेश ऐसे ही होता है। आप हर बार रस्मों से बच नहीं सकते भाई, आराध्या ने मुस्कुराकर कहा। वेद ने गहरी सांस ली और शिवांशा से कहा, ठीक है, कर लो ये जो भी बोल रहे हैं। उन लोगों को भले ही ना समझ आए, लेकिन वेद शिवांशा को हर एक कदम के लिए गाइड कर रहा था। उसकी मर्जी के बिना तो शिवांशा एक कदम भी नहीं रख सकती थी। जैसे जैसे आराध्या बताती गई, वेद और शिवांशा वैसे ही करते गए। पूरी रस्मों के साथ उनका गृह प्रवेश हुआ और फिर वे घर के मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के सामने थे। मंदिर में माथा टेकने के बाद आराध्या ने देवी माँ की मूर्ति के सामने रखा सिंदूर उठाया और उसे वेद के हाथ में रखते हुए कहा, आपको भाभी की मांग में ये सिंदूर भरना होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इन रीति रिवाजों के नाम पर मुझसे कुछ भी करवा रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, वेद ने सख्त आवाज में कहा।
लेकिन आज आप इन रीति रिवाजों से बच नहीं सकते भाई, नव्यांशी ने आगे आकर कहा। लेकिन वेद ने ना में सिर हिला दिया। वेद के आगे भला कोई क्या बोल सकता था? शिवांशा ने महसूस किया कि वो सब उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे। वेद के मना करने पर नव्यांशी ने तुरंत सिंदूर नीचे रख दिया। देवी माँ के मंदिर से बाहर निकलने के बाद आराध्या आगे की रस्मों के लिए कहने वाली थी, तभी वेद ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, कल रात सोया नहीं था। दूसरी बात, मुझे ये सब नहीं करना है। वेद गुस्से में लग रहा था, ये उसकी बातों से सबने महसूस कर लिया था। वेद के भाई बहनों के चेहरे उतर गए थे। वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो ये भी जानता था कि इस वक्त उनके दिल में हजारों सवाल उठ रहे हैं। उसने कभी उन्हें नहीं बताया कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की है। जब भी वे शादी की बात करते, वो कहता कि उसकी जिंदगी में उनके भाई बहनों के अलावा किसी की जगह नहीं है। ऐसे में अचानक उसका शादी करके आना उन्हें उलझन में डाल रहा था। वेद उन्हें किसी तरह की कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और उनसे संजीदगी से कहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, और मैं उन सबका जवाब देने के लिए तैयार हूं। यही चल रहा है ना कि मैंने तुम लोगों को क्यों नहीं बताया कि मैं शादी करने जा रहा हूं, जबकि मेरी खुशी से मुझसे ज्यादा तुम लोगों को खुशी मिलती है। हर बार की तरह उनके बिना कुछ कहे ही वेद ने उनके दिल की बात जान ली थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नव्यांशी आगे आई और वेद से बोली, हमारे दिल में कितने भी सवाल क्यों ना हो, लेकिन वे सवाल आपकी खुशी से बढ़कर नहीं हैं, और हम कभी आप पर सवाल उठा ही नहीं सकते भाई, क्योंकि आप कभी गलत नहीं करोगे। आज आपकी खुशी के लिए आपने कोई कदम उठाया है, तो हर बार की तरह हम आपके पीछे खड़े हैं। शिवांशा उन सबको पहली बार देख रही थी। वो हैरान रह गई, किसी भाई बहनों में इतना प्यार कैसे हो सकता है? अरमान और मनन में भी बहुत प्यार था, लेकिन अरमान मनन को इतना टाइम नहीं दे पाता था। कई बार वो मनन से इरिटेट भी हो जाता था, लेकिन यहाँ तो वेद ने उन सबको बताए बिना इतना बड़ा कदम उठाया था। फिर भी उनमें से किसी के चेहरे पर कोई गुस्सा या सवाल नहीं था। एक बात तो वो समझ गई थी कि उन लोगों के बीच में काफी प्यार है, और वे वेद की बहुत इज्जत भी करते हैं। नव्यांशी की बात से सहमत होते हुए वंश ने कहा, नवी बिल्कुल ठीक कह रही है भाई,
हाँ, अगर आप ग्रैंड वेडिंग करते तो हम बहुत खुश होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह अचानक शादी करके आए हो तो हमारी खुशी कम हो गई है। वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। फाइनली आपने खुद के बारे में सोचा तो सही। वेद ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसने एक बार भी शिवांशा की तरफ नहीं देखा और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं शिवांशा उलझन में अभी भी उनके बीच खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो ये तक पता नहीं था कि कहाँ जाना है या वेद का कमरा कौन सा है। वेद के ऊपर जाते ही वो चारों उसे घेर कर खड़े हो गए और उनके चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट थी। आराध्या उसके पास आते हुए बोली, आप जानती हैं कि आप उम्र में इस घर में सबसे छोटी हैं, लेकिन ओहदे में हम सबसे बड़ी, और हमारे घर में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। फिर चाहे उम्र में आप हम सबसे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप तो जानती तक नहीं कि आपने जिससे शादी की है वो इंसान कितना खास और अच्छा है। अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है तो आप भी खास हो जाती हैं भाभी, नव्यांशी ने कहा। हालांकि उसके लिए ये सहन कर पाना थोड़ा मुश्किल था कि अब वेद की जिंदगी में अचानक कोई लड़की आ गई थी। अगर शादी नॉर्मल तरीके से हुई होती तो उसे सब कुछ इतना सस्पिशियस नहीं लगता, लेकिन फिर भी वेद की खुशी के लिए वो शांत थी। शिवांशा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी अक्षत आगे आया और शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं डियर भाभी, लेकिन फिलहाल आपके पतिदेव थक गए हैं और अगर हमने आपको थोड़ी देर और रोक कर रखा तो उनका गुस्सा कहीं हम पर ना उतरे। हाँ, अब आपको उनके रूम में जाना चाहिए, आराध्या ने हल्का मुस्कुराकर कहा। वंश उन लोगों की बातों में इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि उसका बिहेवियर वेद की तरह मैच्योर था। वो उन लोगों को वहीं पर छोड़कर चला गया। वहीं शिवांशा की आंखें डर से फैल गई थीं। वो किस बारे में बात कर रहे थे शिवांशा को समझ आ रहा था। अरे आप घबरा क्यों रही हैं, हम जानते हैं आप इस घर में नहीं हैं, चिंता मत कीजिए, हम आपको उनके कमरे तक छोड़ देंगे। ये बात अलग है कि भाई ने पैसे बचाने के लिए रस्में करने से मना कर दिया, वरना आपको उनके पास भेजने के बदले हम अच्छे खासे अमीर हो सकते थे, अक्षत ने उसकी घबराहट देखते हुए हंसकर कहा। शिवांशा उन्हें कुछ कहकर रोक पाती उससे पहले वो तीनों उसे लिफ्ट से वेद के कमरे में लेकर गए जो थर्ड फ्लोर पर था। ऑल द वेरी बेस्ट भाभी, आराध्या और अक्षत ने हंसकर कहा और शिवांशा को वेद के कमरे के अंदर धकेलकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वहीं शिवांशा को इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे किसी ने उसे शेर की गुफा में धकेल दिया हो। वेद तो पहले ही उससे इतनी नफरत करता था और अब वो उसके साथ कमरे में अकेली थी। उसे डर लग रहा था कि न जाने वो उसके साथ कैसा सुलूक करेगा, कहीं वो भी अंकुश की तरह उसके साथ जबरदस्ती ना करे। क्या लगता है, शिवांशा का डर सही साबित होगा और वेद भी उससे बदले के चलते हर हद पार कर जाएगा? वेद के कैरेक्टर से अब तक आपको क्या समझ आया, पढ़कर समीक्षा जरूर कीजिएगा।